है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा आपकी पाप मुक्ति और क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है, न कि आपके मेहनत या आपके कर्मों के अनुसार। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। हाँ प्रभु, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आपका वचन जीवित है, जो दोधारी तलवार के समान है, जो हमारे शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं, या किसी प्रकार से दबाव के कारण आत्महत्या करने की योजना बना रहे हैं। पिताजी, आप उनसे बोलें और बातचीत करें, उनकी सहायता करें, ताकि वे इस बात को समझ सके कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आज के इस अध्ययन के द्वारा आप हम सबको आशीष प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम पुत्र परमेश्वर का दूसरा काम देखेंगे जो उसने कलीसिया के लिए किया। प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा का भेद प्रकट किया है, तो आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 1:8-10 को निकालें। इफिसियों की पत्री 1:8-10 में लिखा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। धर्मशास्त्र में भेद की बात क्या है? बाइबल किसी सांसारिक उपन्यासकार द्वारा रचित रहस्यमय कहानी की पुस्तक नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं। धर्मशास्त्र में भेद की बात का अर्थ है कि परमेश्वर ने वर्तमान समय तक जो प्रकट नहीं किया उसे वह प्रकट कर रहा है। नए नियम के रहस्य में से संबंधित दो मुख्य बातें हैं। पहला, यह मनुष्य द्वारा अंतर्ग्रहण करना संभव नहीं, क्योंकि यह सदैव ही ईश्वरीय प्रकाशन है। दूसरा, इसमें रहस्योद्घाटन सही समय पर किया जाता है, जो छिपता नहीं और किसी तथ्य को स्थापित करता है, चाहे उसका पूर्ण विवरण न हो। स्कॉटफील्ड संदर्भ बाइबल इसे अर्थात नए नियम में व्यक्त 11 भेदों का उल्लेख करती है। आइए हम इसे देखते हैं। पहला, स्वर्ग के राज्य का मार्ग, मत्ती रचित सुसमाचार 13:3-50 में। दूसरा, इस युग में इसराइल के अंधे होने का मर्म, रोमियों की पत्री 11:25। तीसरा, इस युग के अंत में पवित्र जनों का स्वर्ग रोहन, 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:51-52, 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:13-17। चौथी बात, नए नियम की कलीसिया, यहूदियों और अन्य जातियों की संयुक्त देह, इफिसियों की पत्री 3:1-12, रोमियों की पत्री 16:25, इफिसियों की पत्री 6:19, कुलुसियों की पत्री 4:3। पांचवा, कलीसिया मसीह की दुल्हन, इफिसियों की पत्री 5:23-32। छठवां, अंतरवासी मसीह का मर्म, गलातियों की पत्री 2:20, कुलुसियों की पत्री 1:26-27। सातवां, मसीह में देहधारी परमेश्वर जिसमें संपूर्ण दिव्य ज्ञान निहित है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 2:7। कुलुसियों की पत्री 2:2-9। आठवां, मनुष्य में ईश्वरीय स्वभाव के पुनः स्थापन का मर्म 1 तिमोथियुस की पत्री 3:16। नवा, अपराध का मर्म 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:7। मती रचि सुसमाचार 13:33। दसवां, 7 सितारों का मर्म प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:20। ग्यारहवां, बेबीलोन का मर्म प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17:5-7। मेरे प्रियो, इसके उपरांत भी क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण जानकारी नहीं दी है? परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातें नहीं बताई है। मेरे पास अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं परमेश्वर से जानना चाहता हूँ। हमसे तो हमारे श्रोता प्रश्न पूछते हैं और हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं, परंतु मैं किससे प्रश्नों का उत्तर खोजूं, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो उनका उत्तर किसी के पास है ही नहीं। एक दिन वह हमें उत्तर अवश्य देगा। अतः मर्म या भेद का अर्थ यहाँ यह है कि परमेश्वर ने जो अब तक प्रकट नहीं किया था उसे अब वह प्रकट कर रहा है। इन पदों में एक अद्भुत मर्म निहित है जो पुराने नियम में अज्ञात था। मैं पद 8 और 9 के अर्थ को स्पष्ट करता हुआ उन्हें दोहराता हूँ, जिसे उसने बहुतायत से हम पर प्रकट किया और संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि सहित अपनी भली इच्छा का भेद प्रकट किया जो उसने मसीह में ठान लिया था। उसकी इच्छा का भेद क्या था? पहले तो यह ज्ञान और बुद्धि का प्रकाशन है। मैं वास्तव में अति आनंदित हूँ कि कुछ समस्याएं एवं मनुष्य सुबोध सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि श्रोता हमें पत्र लिखकर प्रकट करते हैं कि हम सुसमाचार को सुबोध बनाकर सुनाते हैं, जिसे अंतर्ग्रहण करना आसान है। मैं इसे सराहता हूँ क्योंकि हमें यही करना है। डॉक्टर H.A. आयरन साइट कहते थे, बिस्कुट को नीचे की तह में रखना चाहिए कि बच्चे आसानी से ले पाए। सुबोध सुसमाचार तो यही है, परंतु उसकी गहराई और परमेश्वर के ज्ञान को हम नाप नहीं सकते। कभी कभी तो यह असंभव ही होता है। हमें परमेश्वर के महान उद्देश्य और उसकी योजना को समझने के प्रयास में अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को जाने, क्योंकि भेद प्रकट किया जा चुका है। जी हाँ, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में स्वतंत्र करे। प्रबंध भी भेद के समान ही एक शब्द है। इसका अर्थ प्रायः गलत ही लगाया जाता है और अधिकांश जन इसे अच्छा नहीं मानते, परंतु यह एक महान शब्द है। यह शब्द भी लहू, मुक्ति, क्रूस आदि शब्दों के समान अरुचिकर शब्द है। पौलुस क्रूस को ठोकर कहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसका प्रचार ही ना करें। बाइबल प्रबंध की चर्चा करती है, अतः हम विषय को अनदेखा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि प्रबंध का अर्थ युग से नहीं है। हम अनुग्रह के युग के बारे में सुनते हैं, यह समय के बारे में है, परंतु प्रबंध का अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ हो सकता है भंडारी होना, व्यवस्था, प्रबंधन या अर्थशास्त्री अर्थात काम करने की विधि। हम अपने घर में यह निश्चित करें कि आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। जैसा कि एक भाई मुझे आज सुबह पूछ रहे थे कि भाई आप क्या खाना पसंद करेंगे, रोटी या चावल। इसी प्रकार अलग अलग राष्ट्र अपनी अपनी व्यवस्था करके सरकार चलाते हैं। भारत की अपनी राजकीय व्यवस्था है, तो रूस की अपनी, परिवहन की व्यवस्था भी सब देशों की अलग अलग है। कोई दाहिनी ओर चलता है तो कोई देश बाईं ओर। प्रबंध समय से संबंधित तो है, परंतु उस समय में परमेश्वर के काम करने की विधि है। यह तो स्पष्ट है कि परमेश्वर ने आदम के लिए जो प्रबंध किया था वह आपके और मेरे लिए किए गए ईश्वरीय प्रबंध से अलग है। कोई भी कहेगा कि हमारी राजधानी अदन की वाटिका से भिन्न है और परमेश्वर का व्यवहार हमारे साथ वैसा नहीं है जैसा आदम के साथ था। जी हाँ, परमेश्वर के पाप मोचन की विधि एक ही है, परंतु मार्ग और मनुष्य अवश्य अलग अलग रहे हैं। हाविल ने परमेश्वर को मेमने की बलि चढ़ाई थी, तो अब्राहम ने भी चढ़ाई थी। पुराने नियम में याजक मेमने की बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि यही एक विधि है, परंतु हम आराधना में मेमना लेकर नहीं आते हैं। परमेश्वर हमसे नहीं कहता कि हम मेमना लेकर आए। हमारी अर्थव्यवस्था भिन्न है। समयों का पूरा होने, इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर उस समय की ओर अग्रसर है जब प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी पर संपूर्ण राज्य करेगा, जब सब कुछ प्रभु यीशु के शासनाधीन होगा। वह समयों का पूरा होना होगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल उस समय की ओर अग्रसर है जब प्रत्येक घुटना टिकेगा और प्रत्येक जीव कहेगी कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। यही वह भेद है जो हम पर प्रकट किया गया है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 पद में यह और भी अधिक स्पष्ट है। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। अतः स्पष्ट है कि हम अभी उस समय तक नहीं पहुंचे हैं। हम आज एक अलग प्रबंध में हैं। हम एक भिन्न व्यवस्था में वास करते हैं, परंतु परमेश्वर ने हम पर यह भेद प्रकट कर दिया है जो होगा, जबकि वह इससे पहले प्रकट नहीं था। मेरे प्रियो, आज स्वर्ग और पृथ्वी परस्पर सामंजस्य में नहीं है। हम इस पृथ्वी पर अपनी ही राग अलाप रहे हैं। प्रभु यीशु कलीसिया का आधार, हमारी चट्टान तो अभी स्वर्ग में है। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे के अनुकूल होंगे और सब कुछ मसीह में एकत्र हो जाएगा। अब हम पुत्र परमेश्वर के तीसरे काम को देखेंगे जो उसने कलीसिया के निमित्त किया है। प्रभु यीशु हमें उत्तराधिकार सौंपता है। आइए हम पढ़ें इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद को। लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। मेरे प्रियो, ध्यान दे, यह एक और अनुपम सत्य है। वह हमें उत्तराधिकार देता है। वह हमें उस काम का प्रतिफल देता है जो हमने किया ही नहीं है। यह परमेश्वर का सर्वोपरि उद्देश्य एवं योजना है कि विश्वासी प्रभु यीशु के उत्तराधिकार में सहभागी हों। वे मसीह के सह उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वे मसीह में हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस लिखता है, यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। और कुरिंथ के विश्वासियों को उसने लिखा 1 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 से 23 पद में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। मैं परमेश्वर के इस महान सत्य को समझ नहीं पाता हूं, परंतु यह मुझे आकाश की ऊंचाइयों में ले जाता है। सब कुछ मेरा है। मसीह मेरा है, पौलुस मेरा है, मृत्यु भी मेरी है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, यह सब मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। मसीह मेरा है, परमेश्वर मेरा है, हमारा कैसा अनुभव है यह। मेरे प्रियो, मेरा मन करता है कि मैं चिल्लाना आरंभ कर दूं, क्योंकि यह अति अद्भुत है। यह परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, उसने यह निश्चित कर दिया है। यह उद्धार प्राप्त मनुष्यों के संदर्भ में है। परमेश्वर ने किसी का खो जाना पहले से नहीं ठहराया है, उसने पहले से ठहराया है कि हमें उत्तराधिकार प्राप्त हो, अन्यथा मुझे कैसे मिलता। यह मेरे लिए योग्यता के आधार पर नहीं है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरी योग्यता नहीं। यह परमेश्वर की भली इच्छा है, यह भला है, उचित है और सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। इससे उत्तम आपको और क्या चाहिए? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये तीन अद्भुत काम किए हैं। अपने लहू से हमें पाप मुक्त किया, अर्थात हमारे लिए उसने कीमत चुकाई, अपने इच्छा का भेद प्रकट किया और हमें उत्तराधिकार दिया। कैसा अद्भुत उपकार है, मैं इसे खो नहीं सकता। उसने कलीसिया के लिए मूल्य चुकाया और इस कारण मैं उसका हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि उसके लिए कलीसिया बहुत मूल्यवान है? इस पृथ्वी पर मनुष्य की योजनाओं का कोई महत्व नहीं है। हम सोचते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य आज संसार के लिए नक्शे बनाकर भाग दौड़ में लगा है, परंतु वे अगले 100 वर्षों में दिखाई भी नहीं देंगे। वह जनसमूह नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर की महान योजना स्थिर रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी योजना अद्भुत है। मेरे प्रियो, पद 12 संपूर्ण पत्र व्यापी एक महिमा गान है। आप देखेंगे कि परमेश्वरत्व के प्रत्येक व्यक्ति के कामों की व्याख्या करने के बाद पौलुस रुककर यह स्तुति गान गाता है। उसने हमें पुत्र परमेश्वर के काम के बारे में बताया है और अब वह कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों। परमेश्वर विश्वासी की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, विश्वासी परमेश्वर की स्तुति के लिए हैं। जब विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होता है तो वह पूर्णता, संतोष और आनंद का जीवन जीता है। इस प्रकार आप मनोवैज्ञानिक के चंगुल से बच जाएंगे। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो आपके लिए समस्या तैयार हो रही है। परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीवन में उद्देश्य और अर्थ स्थापित करता है। हम उसकी महिमा की स्तुति का कारण होंगे। परमेश्वर युगानुयुग इस योग्य होगा कि हमें कहे, देखो वे तो इस योग्य नहीं थे कि उनका उद्धार करूं, परंतु मैंने प्रेम करके उनका उद्धार किया है। यही तो एकमात्र कारण है जो जीवन को मान, स्थान, प्रतिष्ठा, उद्देश्य, आनंद और महिमा प्रदान करता है। हमारा अस्तित्व उसकी महिमा की स्तुति के निमित्त ही है। यही सब कुछ है। यह स्तुति गान प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करता है। तीसरा स्तुति गान पवित्र आत्मा के कार्य से संबंधित है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप अपने आप को परमेश्वर की निकटता में इस स्तुति गान को गाने के लिए कितना तैयार कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आपने उस उद्धार के आनंद का अनुभव प्राप्त किया है या नहीं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपका नया जन्म हो गया है? क्या आपको विश्वास है कि आप परमेश्वर के पास जाएंगे? क्या आपने उस अनुभव को प्राप्त किया है जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं? यदि नहीं, आज आप निर्णय लें, अपने जीवन को टटोल करके देखें और प्रभु के पास आ जाएं, अपने पापों को अंगीकार करें और उससे कहें कि प्रभु, मैं उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं, उस स्तुति गीत को मैं गाना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। निश्चय जाने कि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपसे अधिक प्रेम करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि आप पापी हैं और आपको उद्धार की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम सब आज की इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें, अपने आप को झांक करके देखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु आज आपने हमें फिर से एक बार इस बात का स्मरण दिलाया है कि आपने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई है, आपने उस बहुमूल्य लहू को बहाया है ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। इतना ही नहीं, आपने हमें अलग किया है ताकि हम उत्तराधिकारी बन जाएं। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस वक्त हमारे बहुत सारे भाई बहन जो आपके इस जीत वचन को सुने हैं और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, विनती करता हूं कि आप उन भाई बहनों के हृदय को स्पर्श करें। उनके जीवन की वेदनाओं को आप जानते हैं, उनके पापों को आप जानते हैं, आप उनकी सहायता करें जो इस समय चाहते हैं कि वे इससे छुटकारा पाएं। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि यह आपके द्वारा ही संभव है। प्रार्थना है पिताजी, आप उन भाई बहनों के साथ हो लीजिए, उनके पापों को आप क्षमा कीजिए ताकि वे इस बात को जान सकें कि आपने ही उनके पापों के बदले क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया है। हाँ प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपका प्रेम आ जाए। जो आज आपको अपने जीवन में बुला रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में प्रवेश कीजिए, उनके जीवन के स्वामी बन जाइए, उनके जीवन में अपनी शांति और आनंद प्रदान कर दीजिए ताकि आज के बाद वे इस बात को समझ सकें कि उनके स्वामी आप हैं और आप ही उनके संचालक हैं, आप उनकी अगुवाई करेंगे। हाँ प्रभु, हर एक बुराइयों से उन्हें छुटकारा प्रदान करें। इस वक्त फिर से एक बार प्रत्येक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। एक एक के साथ होइए, उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही बहुमूल्य निर्णय लिया है और इतना ही नहीं, आपने अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।